ओम शांति। गुड आफ्टरनून आप सभी को इस पोस्ट लंच सेशन बर्नआउट वर्सेस बैलेंस फॉर सस्टेनिंग पीक परफॉर्मेंस इस पैनल डिस्कशन में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस पैनल डिस्कशन। अनलाइक प्रीवियस मॉर्निंग सेशंस और अदर सेशंस, दिस सेशन विल बी मोर इंटरेक्टिव एंड इट विल बी मोस्टली क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड एंड सम पैनलिस्ट्स विल बी देयर एंड विल एंटरटेन योर क्वेश्चंस आल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन। Okay, is it comfortable? Okay, thank you. So, as your topic hai, basically burnout means you all know. Burnout ka actual meaning kya hai? Sabhi ko thoda thoda burnout ka experience hoga. Yes? Yes, exactly. Yes, yes, yes. Okay, okay. Yes, yes. Anything else? Yes? From ladies side, what is burnout? Home life mein bhi burnout hota hai ki nahi? Jab hamara upar itna expectation rehta hai, to we are not able to meet the expectation, so we experience burnout, stress, deadlines, all those things happen. तो जो लोग working life में है उनको भी burnout है, जो home life में भी उनको burnout है। तो this is a daily practice. तो हम experts से सुनेंगे how to deal with burnout. Before that, can you do a small exercise? Because lunch के बाद थोड़ा सा नींद आने का scope है कि नहीं? सभी fresh है, energetic है? All are feeling energetic? Yes. Great. So there is no stress, no feeling of depression, anxiety, everything gone. Am I right? Yes. Very good. So, this beginning, I may request our respected panelists, Mr. Alok Gurtu, please come. Director, Reliance Ethanol Pipeline Limited, please. Rajyogini V.K. Anjali Ben, Senior Rajyoga Teacher, Hyderabad. Ma'am Anindita Maitra, she is a former CGM, Indian Oil Corporation, New Delhi. Please come. Please give a big hand. Professor P.L. Patel. Professor P.L. Patel, Director, VNIT Nagpur. Yes. Please come. Please come. So, with this brief introduction, I welcome all of you panelists for this lively session. Theme is burnout versus balance. How to sustain peak performance. Okay. तो हम कार्यक्रम का शुरू करेंगे। थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। We'll hand over all of our stress, all of our negativity, all of our anxiety to Supreme Almighty and we'll feel relaxed. Energetic for a few minutes. Mr. G.S. Das, DRM East Coast Railway, Bhubaneswar. Mr. G.S. Das, ओके, हम सभी थोड़े समय के लिए, हो सकता है वो बाद में जॉइन करेंगे, थोड़े समय के लिए प्रभु स्मृति में रहेंगे और सभी स्ट्रेस, सभी एंजाइटी हम प्रभु को समर्पण कर लेंगे। ओके, हम सभी इस बहुत रिलेवेंट थीम पर डिस्कशन करने का पहले हमारा जो रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट है उनको हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें स्वागत करेंगे बैजेस और बुक के द्वारा। मिस्टर आलोक गुर्तो, डायरेक्टर रिलायंस इथेनॉल। यस, आप सभी ताली बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। डॉक्टर अनिंदिता मैत्रा, फॉर्मर सीजीएम आयुएस आयोसीएल, प्रोफेसर पीएल पटेल, डायरेक्टर वीएनआईटी नागपुर। मिस्टर जीएस दास, एनीवेयर प्लीज। मिस्टर अंजलि बहन, शी इज फ्रॉम हैदराबाद, हैविंग डन इंजीनियरिंग, शी हैज डन extensive conducted programs all over India and abroad also. Sister Anjali Ben. Mm-hmm. Thank you. Today's chairperson of this session, Professor P.L. Patel, with your kind permission, we'll start this panel discussion. We'll ask questions to each panelist and we'll encourage participation from audience also. Okay, sir? Okay, first thing, I will ask Hamara Matru Shakti, Dr. Anandita Maitra. She has a distinguished career in Indian Oil Corporation, long career with different capacities, now working as a consultant in sustainability solutions. तो उन्होंने बहुत सारे projects में काम किए हैं और IOCL के Women of the Year Award में भी उनको सम्मानित किया गया है. तो एक professional होके आप कैसे burnout को अर्थात अपने level में जो burnouts का situation आता है अर्थात हमारे जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, टोटल एनर्जी ड्रेन हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं रहता है, लगता है कि लाइफ हैज बिकम टोटली एम्प्टी, नथिंग टू मूव अहेड. समटाइम्स दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग कम्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर्स, लॉट ऑफ डेडलाइंस. So you might have experienced, so maybe from your practical experience, from your own personal life, I will request you to share and how you handle those situations so that audience can benefit from your insights.
That this one Anjali bhai aap usko de dijiye wo bhala hai.
Thank you, sir. First of all, thank you to the organizers for giving me the opportunity to be part of this session and in this August gathering and the divine presence. Both things are true in my life. When you are asking ki talk from your own personal experience, so I had experience in handling, I think, highest capex, means from Indian Oil and also at site. So you can imagine the responsibility for every money, public money. For so that was the responsible position I was given, and by God's grace definitely, and a company's leadership. And वो हमको मिला, शुरू से अंत तक मिलते गया. पर बर्न आउट कहाँ हो रहा है? ऑब्वियसली ऐसा अगर आपको एक पोजीशंस मिलता है तो आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा, जो यहाँ पे है परफॉर्मेंस एट योर पीक. पर यस, मेरा जिंदगी में सही में आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट एवर इन माय लाइफ, बट आई एम स्पीकिंग हियर सिंस द क्वेश्चन इज रेलिवेंट. And yes, I had a very bad, extremely bad phase in my life, and how I managed both, it is just like a dream. But when you actually face the situation, उस time पे समझ में नहीं आता है कि burnout हुआ, कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये creep in हो रहा है हमारे character में, system में. धीरे-धीरे हम लोगों को रिजेक्ट करते जाएंगे, लोग रिजेक्ट करते जाएंगे, काम छोड़ते जाएगा. एक ही चीज को हमने पकड़ के रखा था कि जो आपने लिखा हुआ है बाई मारे कोइंसिडेंटली परफॉर्मेंस के टारगेट्स हैं, मेरे लिए एक नया चीज करना, नॉट दैट कि कंपनीज टारगेट, माय टारगेट एंड ऑल मिक्सअप. नो, ये नया चीज हमको देश के लिए देना है विद that objective in mind. I always worked, and उसमें क्या हुआ कि जब मेरे वो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन को अगर हम रखे थे कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव रखा मैंने कि देश के लिए कर रहे हैं, जैसे क्वालिटी अपग्रेडेशन देश के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है अपना पोजीशन इन द टोटल माय लाइफ का जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा उसका परसेंटेज ऑफ पावर कम हो जाता है, तो हम अपने आप का दुख को उतना ग्लोरीफाई नहीं कर लेते हैं उस टाइम पे और उस पे गिर नहीं जाते हैं। फिर भी मैंने गिर गया और पर उठा इसी से ही, गिर इसलिए गया कि आज का जैसे इस तरह का प्रोग्राम मैंने कभी अटेंड नहीं किया था या मेरा कोई कोचिंग नहीं था या आई नेवर हैड एनी सीनियर्स और कलीग्स हु कैन और मे बी एट अर्ली उस समय इतना ज्यादा होता भी नहीं था, मे बी हम थोड़ा जल्दी बर्नआउट का एक्सपीरियंस ले लिया तो समझ में नहीं आया कि आई वेंट इन टू डिप्रेशन आई नेवर केम। जब हमारे ज्यादा चीज प्रॉब्लम में आया कि आई कुड नॉट कीप इन माइंड मेमोरी में याद नहीं रह पा रहा, प्रोजेक्ट में एवरी मनी एवरी थिंग यू हैव टू हैव एट योर टिप्स, तो मैं डायरी लिखती थी हर दिन हर घंटा हर मिनट का डायरी लिख के रखती थी और उसी से वो पूरा टाइम हमने बिताया। फिर जब रियलाइज किया कि ऐसा होता है तो धीरे धीरे केम बैक। हाउ आई केम बैक डेफिनेटली नो डाउट ऑन इट मेडिटेशन इज वॉज ओनली थिंग। आई कुडंट स्लीप आई कुडंट ईट आई नेवर फेल्ट हंग्री आई नेवर फेल्ट लाइक स्लीपिंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन इमेजिन टू वॉट एक्सटेंट आई वेंट बट बाय जो मैंने अचीव किया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स नंबर ऑफ कैपेक्स नंबर ऑफ पोजिशन प्रोजेक्ट वो कुछ इम्पैक्ट नहीं करके हाउ आई केम बैक इज मेडिटेशन विच हेल्प मी कम आउट ऑफ ऑल माई मेडिसिन आई वॉज हेविली डिपेंडेंट अपॉन मेडिसिन सो एवरीथिंग केम हैज गॉन ऑन इट्स ओन। एक टाइम लगा कि मैं सच बात बोल रही हूँ लग नहीं रहा है शायद बट इट इज नॉट ए स्टोरी इट इज नॉट ए स्टोरी इट इज रियल लाइफ एंड एट वन टाइम नहीं फ्यू ईयर्स आई वॉज थिंकिंग दैट आई हैव टू टेक मेडिसिन टिल लास्ट ब्रेथ बट इट डिडंट हैपन। मेडिटेशन केम टू मी एंड आई एम्ब्रेस्ड मेडिटेशन एंड विद दैट आई डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे हमने क्रीप इन किया बर्नआउट एंड डिप्रेशन में वहां से धीरे धीरे आई केम आउट एंड आई डोंट थिंक आप लोगों को मुझे आज देख के लग रहा होगा टुडे आई टीच मेडिटेशन सो दैट इज डिफरेंट सो दैट इज हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन माय लाइफ एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस।
थैंक यू वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है डेडलाइंस रहता है एक्सपेक्टेशन रहता है तो कुछ करने का भी इंटरनली एक जील रहता है तो हो सकता है कभी कभी हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन बर्नआउट जैसा प्रॉब्लम वो कभी भी किसी हालत में आना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हम जब मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आता है। बेसिकली वी मस्ट अंडरस्टैंड मेडिटेशन इज इन ए सिंपल लैंग्वेज इट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स फॉर एनी सिचुएशन। इफ यू आर एबल टू क्रिएट पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स देन that problem will not be so much harmful or so much stressful. So what I got to know, तो हम सभी जैसे burnout केस हो रहा है इवन students में भी हो रहा है young students they are committing suicides you must be knowing. तो एक छोटा सा statistics में बताता हूं there are three developed countries having highest per capita income. Can you guess? Three countries having highest per capita income. One is America, USA, another is Japan, another is Sweden. And you will be surprised कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स ऑल्सो ऑर्डर ऑल्सो इन दैट वे अमेरिका जापान एंड स्वीडन शो द प्रॉस्पेरिटी पर कैपिटा इनकम प्रॉस्पेरिटी आउटर वेलबींग दैट इज नॉट गिविंग सॉल्यूशन फॉर इनर डिप्लेशन तो दिस गिव्स अस एन रिफ्लेक्शन that we must find out the ways and means where dependency on outside is reduced and that is where meditation comes to picture to is rasta mein hamari aadarniya anjali didi jo ki basically an engineer and done mtech also and has been dedicating her life for the last I think more than 30 years. Yes, Anjali Ben. She is now stationed at Hyderabad and touring all over India, organizing programs, conducting sessions on different aspects of life, stress-free living, mind management, leadership. So, ऐसे नहीं समझना कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डेडिकेट हो जाने से चैलेंजेस कम हो जाएगा देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एनर्मस चैलेंजेस क्योंकि आप लोग तो छोटा सा फैमिली छोटा सा इंस्टीट्यूशन छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मैन पावर को हैंडल करते लेकिन आप जिन ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स जो जहां रहते हैं वहां स्टूडेंट वहां रेगुलर लोग आते हैं भी डिफरेंट एक्टिविटीज ये तो आप देख रहे हैं इससे ईयर राउंड एक्टिविटी चलता रहता है डिफरेंट प्रोग्राम्स चाहे जेल में प्रोग्राम चाहे इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम ट्रेनिंग सेशंस प्रोग्राम डेली स्पिरिचुअल क्लास मेडिटेशन प्रोग्राम सो मेनी एक्टिविटीज सो मेनी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 30 ईयर्स आई एम सीइंग Brahma Kumari is so much of activities and we can see here how things are happening. Jo bhi aata hai, puchta hai, ki yahan kaise chal raha hai? There is no command, there is no control. Everybody asks simple question, how things are running. So, challenges are everywhere, but how challenges are handled? How stressful situations are handled? By inner empowerment, inner strength. हम सभी जानते हैं stress is हम सभी जानते हैं force per area और in our spiritual language stress is outer pressure divided by inner coping ability. How much you can cope, it is up to you. Outer things it is not in your control. So जो inner strength उनको कैसे हम एनहांस करें तो हम आदरणीय अंजलि दीदी से सुनेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हम सभी को जो यहाँ डिफरेंट जगह से इंडस्ट्रीज चाहे होम मेकर्स भी होंगे सभी प्रकार प्रोफेशन से आए मेडिकल से भी कुछ लोग आए तो सबके लिए इफेक्टिव होगा अंजलि
ओम शांति सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति पहले तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ यू आर एट पीक परफॉर्मेंस यू हैव बीन गुड लिसनर्स फ्रॉम द मॉर्निंग 6:30 बजे से आप सुनते ही आ रहे हैं और फिर से अभी इस सेशन में भी आप सभी पहुंचे उसके लिए पहले तो आप अपने आप को शाबाश दीजिए हाँ ऐसे शाबाश दीजिए एक दूसरे को भी शाबाश दीजिए एक दूसरे को भी शाबाश कीजिए अच्छा आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं जहां भी आपका अकोमोडेशन है आप भोजन कर रहे हैं तो भोजनालय है फिर डाइनिंग है फिर आप सब मूव कर रहे हैं सो देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे आपके ऑफिसों में होते हैं ऐसे यहाँ भी डिपार्टमेंट्स ये सब संभाल रहे हैं। यहाँ ब्यूटी क्या है आपको कौन कर रहा है वो नहीं दिख रहा है, नहीं कौन कर रहा है ये सब। बट लेट अस से इफ यू हैव टू गिव परफॉर्मेंस ऑफ द लेट अस से जो भोजन खा रहे हैं उसको कितने मार्क्स देंगे आप? 10 out of 10, 100 out of 100। जहां आप डाइनिंग में आपको सर्व जो है वो हो रहा है वो सारा उसको कितने मार्क्स देंगे वो डिपार्टमेंट को? 100 out of 100। और जहां पर आप अकोमोडेटेड है नहीं, आपका रूम हो या जो है वॉशरूम्स है या अदर एरिया आउटसाइड क्लिनलीनेस एंड ऑल दैट, उसको कितने मार्क्स देंगे? अच्छा ठीक है, अभी आप यहाँ प्रोग्राम में आकर बैठे हो, इस स्टेज को संभाल रहे हैं, पीछे बहुत सारा काम तो चल ही रहा है ना, तो यहाँ के डिपार्टमेंट वालों को कितने मार्क्स देंगे? तो पीक परफॉर्मेंस इज व्हाट यू आर प्रैक्टिकली सीइंग, सीइंग और नॉट सीइंग? सीइंग, सो यू जस्ट रेज योर हैंड्स एंड शो मी। अच्छा बहुत अच्छा। बाकी जो बहने भाई आपको दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं? स्ट्रेस्ड, बर्नट आउट, सब बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके सारा कारोबार कर रहे हैं, नहीं कोई भी स्ट्रेस नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो पीक परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे है क्या वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये सारा जो परफॉर्मेंस दिख रहा है हम इस परफॉर्मेंस को वी कॉल इट सेवा। क्या है ये? सेवा, ये जॉब नहीं है। डू यू नो देयर इज नो पेड समर्पित ब्रदर और सिस्टर हियर, वी आर ऑल वॉलंटियर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर गिविंग ऑनररी सर्विसेस, गॉट इट? So we are not paid servants over here. None of us is paid over here. We are honorarily doing our seva. So the first thing is यहाँ सेवा का भाव and सेवा, सेवा पहले भाव, भाव में सेवा भाव है और सेवा के पीछे हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा की सब्जेक्ट के पहले तीन सब्जेक्ट बताई जाती है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, देन द राजयोगा मेडिटेशन, देन प्रैक्टिकली अप्लाइंग वर्च्यूज एंड वैल्यूज इन योर लाइफ। दीज आर आर थ्री सब्जेक्ट्स एट पर्सनल लेवल एंड द फोर्थ थिंग इज इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल में वी कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल जिसको हम सेवा की सब्जेक्ट कहते हैं। तो द रीजन वाई यू हैव सीइंग ऑल दिस पीक परफॉर्मेंस इज एट पर्सनल लेवल ईच वन यहां पर ज्ञान योग और गुणों की धारणा ये सब्जेक्ट इनमें अपना समय देता है। वी गिव टाइम इन दिस। कब टाइम देते हैं? नॉट अभी तो सेवा का सब्जेक्ट चल रहा है ना, इन आवर पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम तो मॉर्निंग, मॉर्निंग में 4 o'clock इज आवर पर्सनल टाइम। तो बिटवीन 4 to 8 यहां पर रोज, यहां ही नहीं जो भी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र होते हैं वहां पर यह एक्टिविटी चलती है ज्ञान और योग की। और इस दो चीजों के कारण हमको रोज डिवाइन वर्च्यूज कैसे अपनी लाइफ में लाना है उसके बारे में यू नो ऑल द टाइम हमारी जैसे कहो एक रिफ्लेक्शन होते रहती है डेली डेली। और उस रिफ्लेक्शन के कारण नेचुरली व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, यू आर लिटरली परफॉर्मिंग, उस समय यू आर ऑलवेज यू नो विथ एन अवेयरनेस कि मुझे सबको सुख देना है, मुझे प्रेम से कार्य करना है, ये भगवान का काम है। सो ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्याल रखे जाते हैं। जो अभी मैं बहन का सुन रही थी एक्सपीरियंस, तो यू नो व्हाट शी वाज सेइंग टू हरसेल्फ, नहीं नहीं मैं देश के लिए कर रही हूं। सो जब उस प्रकार का भाव उत्पन्न होने लगा तो इनकी जो स्ट्रेस लेवल थी उसमें डाइल्यूशन आ गया ना। तो जहां पर विश्व कल्याण यू नो डूइंग गुड फॉर अदर्स, जब तक ये भाव नहीं आता है मुझे जो ऐसे लगता है तब तक मे बी यू विल परफॉर्म वेरी वेल बट देन बिकॉज वो परफॉर्मेंस इज ओनली फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन तब तक ओनली फॉर मी मेरा 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 मैं मेरा 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 उसमें देर इज नो इंक्लूसिविटी अदर्स आर नॉट देयर तो इसलिए दूसरों की दुआएं आशीर्वाद गुड विशेस वो सारे कितने मिलते हैं आई डोंट नो बिकॉज मुझे करना है मैं घर से सुबह चले जाऊंगा रात में आऊंगा बच्चों की एग्जाम है बच्चा आपको कहना सकता है पापा एग्जाम ठीक नहीं गई अच्छा ठीक है अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ कल मिलेंगे मेरा कल इंटरव्यू है मेरे को उसकी तैयारी करनी है तो आप अपने पिक परफॉर्मेंस के बारे में ही सोच रहे हैं बाकी आपके जो आजू बाजू आपके परिवार है उनके बारे में आप कहाँ सोच रहे हैं सो यह एक प्रकार का बैलेंस जो है वह छूटता जा रहा है बैलेंस कम होता जा रहा है तभी देन यू गो इनटू दिस स्टेट कॉल बर्न आउट बिकॉज आपका जो बर्निंग डिजायर है ना उसमें दूसरों की दुआएं कहाँ है अच्छा घर वालों की ले लो चलो दूसरों की तो बहुत छोड़ देंगे फ्रेंड सर्कल एंड कलीग्स एंड ऑल दैट लेकिन घर वालों की भी दुआएं कहाँ हैं तो सबकी दुआएं लेकर के वो कार्य करते हैं तो हमको सहयोग यू विल स्टार्ट गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड इफ यू आस्क मी माई एक्सपीरियंस ऑल्सो इवन इफ कोई भी सेवा का कार्यक्रम मुझे आश्रम पर कराना भी है तो वी मेक इट अ वेरी वेरी इंक्लूसिव प्रोग्राम इट इज नॉट माइन मेरा या मैं कहते हूं आपको करना है ऐसे नहीं कार्य परमपिता परमात्मा का है हम सब उसमें आज दीदी ने एक बड़ा अच्छा लेसन सिखाया ना मोहिनी दीदी ने निमित्त मात्र है और फिर हमको सबका सहयोग लेना है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ गुड विशेस एंड जब हम यह लेते हैं तो कितने भी आप कार्य करो आप बहुत आराम से कर सकते हैं बहुत आराम से वो देखिए आई विल एंड विद दिस स्मॉल थिंग गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया दिखाते हैं ना पीक परफॉर्मेंस है ना पीक परफॉर्मेंस उसके पीछे मीनिंग क्या है एनी टास्क माइट बी एज ह्यूज एज द लिफ्टिंग ऑफ अ माउंटेन बट देन एक्चुअली व्हेन ऑल ऑफ अस कॉन्ट्रीब्यूट ईच वन्स कॉन्ट्रीब्यूशन हाउ मच ओनली दिस मच छोटी सी उंगली ब्रह्म कुमारी इसमें हमको सिखाया गया इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करो छोटी सी उंगली जितना उसमें तीन है तन मन धन जितना हो सके ड्रॉप इन एन ओशन उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करो और सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा सो प्री परफॉर्मेंस इज नॉट यू इफ यू मेक इट वेरी पर्सनल यू विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस यू मेक इट एन एक्टिविटी वेर इन अदर्स ऑल्सो उनका लाभ होगा उनका भी कल्याण होगा देन यू नो वह चीज सबके हित में होती है और उसमें हमको मजा भी आता है एंड ये जो बर्नआउट वाली कंडीशन है आई थिंक इसको हम थोड़ा यू कैन रियली डाइल्यूट दैट थिंग द रीजन फॉर दैट बर्नआउट इज आई हैव टू डू मुझे ही करना है मैं ही कर सकता हूं और किसी को कुछ आता ही नहीं है सो यू कैन ऑलवेज मेक इट मोर पार्टिसिपेटिव एंड मे बी इट हेल्प्स ओम शांति
थैंक यू दीदी फॉर सच ए वंडरफुल इनसाइट्स तो प्रैक्टिकली प्लीज वेलकम वी आर वेलकमिंग मिस्टर जीएस दास प्लीज डू कम गिव ए बिग हैंड मिस्टर जीएस दास डीआरएम इसको रेलवे भुवनेश्वर हमारी बहनें आएंगे आपका बुके और बैज द्वारा स्वागत करेंगे आज का इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है वेलकम है हमारा ऑनरेबल पैनलिस्ट जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड द सेशन प्लीज तो बेसिक आइडिया इज कि हम कैसे बर्नआउट को ओवरकम करेंगे, अर्थात स्ट्रेस लेवल को, आउटर प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे अभी सभी पैनलिस्ट अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, दीदी जी ने जैसे हम सभी को एक इम्पोर्टेंट टिप दिया कि हम रियल लाइफ में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कि जो आज सुबह से हम सुन रहे हैं उस चीज को शिवानी दीदी ने सुनाया, हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी ने सुनाया, दीज आर नॉट लेक्चर्स, दीज आर प्रैक्टिकल विजडम। अब मोहिनी दीदी जी जो आज संस्था के मुख्य है, उन्होंने न्यूयॉर्क में सेवा दे रहे हैं, जहां यूएन के साथ हैंडलिंग करना पड़ता है, यूनाइटेड नेशंस के साथ, जहां यूएस का कल्चर है टोटली सो कॉल्ड मैटरियलिस्टिक कल्चर है, वहां स्पिरिचुअल इनपुट देना। तो ये सब का पीछे जो विशेष सीक्रेट है जो हम सभी को अडॉप्ट करना है, जो शिवानी दीदी ने भी कहा कि जो कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमको आएगा, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस अवेयरनेस में रहना है, आई एम गॉडली इंस्ट्रूमेंट। तो हम कभी हमारे अंदर में ये नहीं आएगा कि ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, उसका काम है, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तो इस संबंध में हमारे जो रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर आलोक गुरतुर साहब है, जो कि रिलायंस से आए हैं, आप सभी जानते हैं रिलायंस इज सच ए बिग इंडस्ट्री, वहां का आप पाइपलाइंस सभी का लेआउट स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन में है, तो आप थोड़ा सा हम सभी को शेयर करेंगे कि स्ट्रेस को ओवरकम के लिए क्या पर्सनल हैबिट्स वो कितना इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं, छोटा छोटा हैबिट्स में भी हम अपने अंदर में वो कल्चर ला सकते हैं कि लोगों की और पर्सनल लाइफ में हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते। प्लीज।
ओम शांति। एट द आउटसेट लेट मी थैंक द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लॉट हेयर एंड ऑल्सो टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। इट्स रियली अ प्लेजर। आई हैव बीन टू दिस प्लेस, दिस फॉर द थर्ड टाइम आई हैव कम टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, एंड इट इज ऑलवेज माई प्लेजर to attend such a conference where all are my own fraternity, engineers and architects, so it's always my pleasure. I'm really very, very thrilled to always to come here. And अभी आज दूसरा दिन है, मैंने बहुत कुछ सीखा, कल से भी सेशंस चल रहे हैं और काफ़ी सीखा, कह सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा एक आनंद वाली स्थिति के अंदर मैं अपने को महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। जो आपने भाई जी ने प्रश्न पूछा है, मैं उसके विषय में क्या बेसिकली कैसे हैबिट्स वैल्यूज बिहेवियर्स जो कि बेसिकली स्ट्रेस या बर्नआउट को कम करने में मदद करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगा जो मैं खुद समझता हूं स्ट्रेस और बर्नआउट के बारे में। स्ट्रेस जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पदार्थ, अगर आप देखोगे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स, सभी जो है कोई ना कोई स्ट्रेस में रहते हैं। आपने देखा होगा चाहे स्टील स्ट्रक्चर्स हों, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हों, हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेस में है। उसके फार्मूलाज भी हैं स्ट्रेस को नापने के कि एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक जो है स्ट्रेस इज एक्सेप्टेबल, और सभी में होता है। वैसे ही हमारे अंदर भी, ह्यूमन बीइंग्स में भी, एक लिमिट तक या एक स्ट्रेस होना, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करेंगे और जिसके कि टारगेट्स फिक्स्ड हैं, ऐसा तो है नहीं हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, समय की सीमित है, रिसोर्सेज भी सीमित हैं, तो उसमें अगर हम कार्य करते हैं तो उसमें स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। मगर इसी स्ट्रेस को अगर हमने अगर स्ट्रेस के बुरे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं कि आदमी को या कार्यकर्ता को ऐसा महसूस होने लगे कि भाई काम में मन नहीं लग रहा है, उसका मे बी फिजिकल मेंटल और इमोशनल कंडीशंस जो है वो बिगड़ने लगे, तो उस इंडिविजुअल को भी और वहाँ के प्रबंधन को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अब स्ट्रेस जो है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता जा रहा है और ये एक चिंताजनक स्थिति किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्था के लिए हो सकती है। इंडिविजुअल के लिए तो है ही, संस्था के लिए भी हो सकती है। और आपने देखा होगा कई बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाएं, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां केवल इसी की वजह से आपकी बंद भी हो गई हैं, ख़त्म सी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने समय पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यही स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता जाता है तो वो एक बर्नआउट स्थिति में हो जाता है, जिसे बर्नआउट जैसा नाम से ही आपको लगता है, अजीब सी आप में अंदर से एक अग्नि सी आपको लगेगी जैसे कोई आग आपको खाया जा रही है, बहुत ही अनइजीनेस सी लगेगी। मैंने देखा है कुछ लोगों को, हालांकि मेरे जीवन में बर्नआउट वाली स्थिति कभी नहीं आई, हालांकि स्ट्रेस कई बार ऐसी स्थिति में आई, लगा कि जैसे बर्नआउट स्थिति में आ जाएंगे, मगर मैं चूंकि शुरू से मेडिटेशन और थोड़ा सा आध्यात्मिक उस तरफ ध्यान देता था तो इसलिए मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, तो वैसी स्थिति नहीं आई। मगर मैंने अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को ऐसी स्थिति में जाते हुए देखा है, बर्नआउट की स्थिति में। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बहुत इंडिविजुअल का भी नुकसान हो सकता है, किसी में आपने देखा होगा डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन स्थिति में चले जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, सो डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा लोगों में एक एंगर क्रिएट होता है, वो भी स्थिति हो सकती है, एंगर विच मे कन्वर्ट इंटू एजिटेशन या लेबर अनरेस्ट या उस तरीके की स्थिति भी आपने देखी होगी, विच मे कन्वर्ट इंटू वायलेंस, बाद में हिंसक भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस या बर्नआउट की स्थिति हो सकती है, तो इसको अपने को हमेशा बचाने का है। जैसा कि भाई जी ने बोला कि क्या करना चाहिए या वैल्यूज और ये सब कैसे काम करते हैं, अगर मैं प्रोफेशनल, आई विल लिमिट माई सेल्फ टू द प्रोफेशनल पार्ट, तो उसके अंदर बेसिकली जब आपको ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, आपको लग रहा है कि लोग ऐसी स्थिति में हो गए हैं, तो लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहिए, जितना आप पूरी कंपनी के साथ तो नहीं कर सकते, अगर आप मान लीजिए कंपनी के सीईओ हैं या बहुत ऊंची पोजीशन में है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आप 500,000 लोगों से आप पर्सनली कीजिए, तो उसके लिए सर्वे एजेंसीज हैं, आप सर्वे, एक अच्छी सर्वे एजेंसीज को हायर कीजिए, उससे आप पता कीजिए कि भाई आपके एम्प्लॉयज में क्या इश्यूज हैं, क्यों उनको स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई इशू है या लोगों में कुछ इशू है। तो एक तो कई बार लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, काम जबरदस्ती हम उनको पकड़ा देते हैं काम जो है, तो उससे दैट मीन्स द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वो नहीं होता। कई बार आपके लोग जो है किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें डाल दिया तो उसको काम में मजा नहीं आता, वो धीरे धीरे वो स्ट्रेस में आ जाएगा, फिर बर्नआउट स्थिति में हो जाएगा। तो ये भी देखना है हमको कि एक तो वी शुड चूज द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, कोई थोड़े से स्ट्रेस वाले जॉब्स हैं तो उनको ऐसे लोगों को चूज करना है जिनमें क्षमता ज्यादा हो, जिनकी फैमिली इश्यूज कम हो, तो इस तरीके से आपको एक राइट चॉइस करनी है। दूसरी चीज की कंपनी की जो अपनी पॉलिसीज हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए, यू शुड हैव गुड पॉलिसीज एंड एचआर शुड बी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो भी सेंसिटिव होना चाहिए और ये सब चीज में संवेदनशील होना चाहिए कि समय पे वो एम्प्लॉयज की इस प्रॉब्लम को ध्यान दे सके. दे शुड बी गुड लिसनर. सो ये एक बहुत मदद कर सकती है. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे हमारे यहाँ ये वैल्यूज एंड बिहेवियर्स को बहुत ध्यान देते हैं. कोई भी व्यक्ति कितना भी कर्मठ हो, कितना भी बुद्धिमान हो, उसमें बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, मगर यदि उसमें संस्कार नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो एक अच्छा कार्यकर्ता या एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं हो सकता. और एक लंबे समय में, लॉन्ग मे भी शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेसफुल हो सकता है मगर एक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो इसलिए वर्क विद वैल्यूज इज वेरी इम्पॉर्टेंट और ये कंपनीज को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. और लोगों को जो लीडर हैं दे शुड लीड बाय एग्जांपल. आप केवल लोगों को बोलते रहोगे ये करो, आप खुद काम नहीं करोगे, जल्दी भाग जाओगे और एम्प्लॉय से बोलोगे रात को बैठ के 9 बजे तक काम करो तो कोई नहीं करेगा, उसको स्ट्रेस होगा. तो आपको भी लोगों को लीड करना है. यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. और जब लोग देखते हैं, आपके संस्कारों को देखते हैं, आपको देखते हैं, तो उनमें प्रेरणा आती है और उनमें एक कार्य करने की एक इच्छा या शक्ति भी आती है जिससे कि वो आराम से बिना स्ट्रेस के काम कर सकते हैं. तो आपने कई लोग देखा बहुत स्ट्रेस का ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कोई इतने में इतना काम करने से स्ट्रेस हो जाएगा. मैंने देखा लोगों को 12-12, 14-14 घंटे काम करते हुए मगर फिर भी वो स्ट्रेस में नहीं होते हैं क्योंकि उनमें एक तो कार्य के प्रति एक इच्छा होती. जैसे अभी दीदी ने बताया, अब यहाँ पे जैसे अब कौन है, यहाँ पे कोई कमांड सिस्टम नहीं है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, तो हाईली मोटिवेटेड टीम, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं. ये एक आइडियल स्थिति है. अगर ऐसा सभी कंपनियों में हो जाए तो हमारे ख्याल से भारत को विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. सो हम सबको यही कोशिश करनी है कि अपना मोटिवेशनल लेवल अगर हम किस तरीके से एम्प्लॉयज के अंदर बढ़ा सकें और लोग अपने आप स्वइच्छा काम करें तो हमारे ख्याल से कभी भी लोगों को स्ट्रेस से बर्नआउट की तो आप भूल ही जाइए, बर्नआउट की स्थिति कभी होगी नहीं. स्ट्रेस भी ऑप्टिमम लेवल पे होगा जो कि अच्छा है. ऑप्टिमम लेवल पे स्ट्रेस होना मैं कोई बुरा नहीं मानता, वो एक अच्छी स्थिति हो सकती है. तो इसलिए इन द एंड टू कंक्लूड, वर्क विद वैल्यूज इज वेरी इम्पॉर्टेंट और अगर हमें हमारे देश को लीड करना है तो हम सबको मिलके, जैसा कि हम यहाँ पे भी सीखते हैं, जो बाबा ने हम सबको संस्कार दिए हैं उन्हीं संस्कार से हम अपनी अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में उनको जो है इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करें. और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब इंडिविजुअल ये सब करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा. धन्यवाद.
थैंक यू. तो हम सभी प्रैक्टिकली हमारे जो वर्क फ्रंट में, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम वर्क प्रेशर को हैंडल करने के लिए विशेष हमारे जो टीम है, हमारे जो वर्क फोर्स है, हमारे जो जूनियर्स है, उनको लीड करे अर्थात उनको मोटिवेट करे, उनको इंस्पायर करे बाय लीडिंग बाय एग्जांपल. तो हम देखते कि वर्क समटाइम्स वर्शिप है और समटाइम्स वारशिप है. बहुत लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेग पुलिंग होता है, ये सब होता है. तो जो चाहते हैं आउटपुट, वो आउटपुट हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाते हैं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाते हैं. तो प्रैक्टिकली हम अभी दास साहब से शेयर सुनेंगे कि ये जो वर्क फील्ड में हम टीम को लीड करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करें कि उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल करें, उनके एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करें, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन कैन बी एनीथिंग, प्रमोशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, ये सब है। तो ये सब को लेके हमारा परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे ग्रो करें, हम चाहेंगे कि दास साहब इस पर इनपुट दे। आपने बहुत लंबे कैरियर से रेलवे का बहुत सीनियर पोस्ट में रहे और अभी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रेलवे डिवीजन में सेवाएं दे रहे, लॉन्ग एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपीरियंस एज ए गुड मोटिवेशनल स्पीकर। सो दिस इज हाउ वी वेलकम हिम एंड प्लीज शेयर योर इनपुट। दस
आई कैन यूज द डायस ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। विद द परमिशन ऑफ द चेयर मैं आगे आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एनर्जी अभी भी बरकरार है दिन भर के काम के बाद। एक प्यारा सा संदेश लेके मैं आया हूं। टॉपिक तो हमारी बर्नआउट है, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। हमारी जीवन में परमपिता ईश्वर ने हमें एक ही मोमेंट दिया है। देयर इज ओनली वन मोमेंट इन आवर लाइफ व्हिच हैज बीन गिवन बाय डिवाइन ऑलमाइटी व्हिच इज कॉल्ड प्रेजेंट। उसे प्रेजेंट क्यों कहा है? प्रेजेंट का मतलब है तोहफा। प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। पास्ट को भूत कहा है। Past is bhoot. Why bhoot? All the memories, all the deeds, all the karmas of the past hang on us as a weight, as a bhoot. इसलिए उसे भूत काल कहा है। आज सुबह शिवानी दीदी ने कहा हमें, how do we evaluate the past, live in the present and look into the future. त्रिकाल दर्शी होके जीने के बारे में उन्होंने कहा था। दोस्तों उस संदर्भ में मैं छोटी सी उसको एक्सपैंड करता हूं ताकि हमें काम पे आए हमारी डे टू डे लाइफ में। ये जो प्रेजेंट मोमेंट, इसको गिफ्ट कहा गया है। उसको गिफ्ट क्यों कहा गया है? क्यों ना पास्ट को गिफ्ट कहा, ना फ्यूचर को हमने गिफ्ट कहा है? हम तो सब पास्ट के आधार पे फ्यूचर को बनाने में लगे रहते हैं। पास्ट आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल, एनी राइट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग दैट हैज गॉन। Tomorrow I do not know what will happen. क्या होगा कल मुझे मालूम नहीं है। अभी इसी मोमेंट मेरे हाथ में एक शक्ति है, एक पावर है। क्या पावर है वो? What is that power that I command at this present moment? I like to ask the audience. Yes? Yes? कोई माइक दे उनको, मैं भी तो सुनू। एक माइक दे। What is that power do we have in this present moment? टाइम, टाइम, माइक प्लीज, माइक प्लीज, सब नहीं तो आगे आके बोलिए और माइक दीजिए उनको। चलिए मैं कह देता हूं माइक आने तक। प्रेजेंट मोमेंट हैज द पावर टू एक्सपीरियंस दिस मोमेंट। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन हैव एट दिस मोमेंट? Anybody? What kind of experience I can have at this moment? Yes? Yes? Present? Pleasant? Pleasant? Give a good hand for him. Give a good hand for him. There are only two things I can experience in this present moment. Either I am feeling good or I am not feeling good. There is no other experience. Am I right or wrong? Right or wrong? Either I can feel good or I am not feeling good, that's all. If I am feeling good, the reason may be millions. Meri promotion hui hai, people are respecting me, I am happy, my child has done good, I am respected, I am valued, I feel physically safe. These are all the reasons why I feel good. Why I not feel good? I'm not even valued. I'm not respected. Nobody listens to me. I have no social status. My children are not going good. There could be a million reasons. But the experience is only two. Either I'm feeling good or I'm feeling bad. The moment when I feel good, when I feel secure, when I feel loved, hum ise a moment of heaven kehte hain. I repeat, it is my own definition. A moment of heaven is a moment when I feel good from all respects. A moment of hell is a moment when I don't feel good at all. Aap sabki ye anubhav hai, moment of heaven and moment of hell ki. Friends, if, thank you, if I make a bid of all these moments, is sare moment ka agar ek mala bana ke main pehen leta hoon, my life is that garland, nothing else. Har ek moment jo main bitata hoon, har ek moment jo main exist karta hoon, if I make a garland and wear it, this is what is my life, nothing else. Agar aap apne piche laut ke dekhenge, aapki ek mauka main aapko doon, if you want to create a moment of heaven or a moment of hell, aap kya create karne chahiye apne liye? Heaven. Can I hear it loudly? If I want to give an opportunity, what you would like to create? Heaven, yes. I want to know, koi agar hell create karna chahega? Nahi chahega. Aap abhi laut ke apni zindagi mein dekhiye, aapki mala mein dekhiye, how many moments of hell and how many moments of heaven you are wearing. Aapni life mein kitni moment hai jo ki dukh dard ka hai, kitni moment jo ki exhilaration ka hai, ecstasy ka hai, joy ka hai. Ye guarantee ke sath kehta hu, jab aap yahan par pair rakha, tab se moment of heaven hi chal raha hai. Yes or no? Can I hear it loudly? आप वही है, आपकी नौकरी वही है, आपके घर वाले वही है, आपकी परिस्थिति वही है, but you have the experience of moment of heaven since you stepped into this भूमि. बदला क्या चीज बदला है इसमें? क्या चीज बदला है? मनस्थिति बदला है. Give him a big applause. Mindset बदली है दोस्तों. Every moment, the state of my mind, the state of my thinking is what determines whether I'm experiencing a moment of hell or a moment of heaven. This is deeply, deeply, deeply connected to my biology. Subhi Didi ne bataya tha, usko main thodi expand karunga. Every time I think good, there is a set of chemicals. There is a set of chemicals. Meri brain se secret hoti hai. To keep it very simple, main wo chemicals ka naam nahi kahunga. There are dopamine, dopamine, there are a lot of things. Those ki amrit ka chemical hum kehte hain. What they make you? They make you feel good. You are loving somebody, there is a chemical that is secreted in your mind. You feeling good, there is a chemical. How does this chemical affect our body? The moment those neurochemicals are secreted in my brain, they are being read by something called my neurons. Meri dimag mein jo neurons hai, brain mein, wo usko sungte hain, padhte hain, janne ki koshish karte hain, kya banaya isne. How do they read those chemicals? Just by feeling them. What they do? They copy these neurochemicals on the other end of the neuron. From there the next neuron catches hold of this and he copies it. Kaise copy karta hai? He just reproduces those physically. Iska matlab, meri man mein jo soch janam liya hai, either good or bad, that has become a neurochemical. Now that is getting transmitted into my brain one by one, one by one, one by one. Ek end se relay race type ki transmit hona chalu hota hai. Kitni speed pe transmit hoti hai? In a fraction of second, one in a million, 1 lakh, 10 million neurons will cross. Meri brain mein kitne neurons hai? 100 billion neurons hai, 100 billion neurons hai. 100 billion, kalpana kar sakte hai, kitne badi sankhya hai. They transmit them. Us body chemical ko aur kon padhta hai? मेरी बॉडी में देर आर सम सेल्स देर कॉल्ड इम्यून सेल्स दे ऑल्सो रीड दोज केमिकल्स. इम्यून सेल कहां पर है मेरी बॉडी में? कहां पर है इम्यून सेल्स मेरी बॉडी में? एनीबडी? यस, ब्लड. यस, लिम्फ नोड्स. मेरी बॉडी में हर जगह में इम्यून सेल्स है. एवरी सेल ऑफ माई बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज हैविंग इम्यून सेल. जैसे मेरी बॉडी में ये बहता हुआ नदी है, इन एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस का एक बहता हुआ नदी है. एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी हैज इम्यून सेल्स. व्हाट दी सेल्स डू? दे लव गॉसिपिंग. व्हाट काइंड ऑफ गॉसिप दे डू? द मोमेंट माई ब्रेन प्रिपेयर्स अ न्यूरोकेमिकल, दे रीड इट एंड टेल टू द अदर सेल इसने ये बनाया है. कैसे गप्पा लगाते हैं ना? बना के इसको दिखा देते हैं, देख इसने बनाया है ये. द अदर न्यूरोन सेल अगेन दैट सेल मेक्स अनदर वन. देखते देखते द थॉट दैट आई हैड माई इन माई माइंड इज बींग रिवर्बरेटेड एज केमिस्ट्री एज बायोकेमिस्ट्री इन माई एंटायर बॉडी. मेरे दिमाग में जो टेंशन होता है मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरी मसल स्टिफ हो जाता है, परस्पिरेशन होता है, गट स्ट्रांग हो जाता है. मुझे जब स्ट्रेस होता है हाउ माई गट नोस की देर इज अ स्ट्रेसफुल थॉट. माई गट डजेंट नो इंग्लिश, माई गट डजेंट नो कन्नड़ा और हिंदी. ही स्मेल्स दोज केमिकल्स थ्रू दीज सेल्स. विथ इन अ मिनट यू आर गेटिंग इन टू स्ट्रेस, योर एंटायर बॉडी इज रिवर्बरेटिंग इन दोज केमिकल्स. इधर फील गुड और फील बैड. इसको मैं कहता हूं इधर एक अमृत का एक बूंद बनाया है अपनी बॉडी ने और विष का पॉइजन का एक बूंद बनाया है. दोस्तों, आपका हर एक थॉट जो आपके मन में आती है, दे क्रिएट ए मॉलिक्यूल ऑफ पॉइजन और अमृत. एंड कंट्रोल मेरी है, मैं क्रिएट करता हूं विथ एवरी थॉट. डू यू नो हाउ मेनी थॉट्स माई माइंड क्रिएट्स एवरी डे? 50,000 to 60,000 cross my mind. 99% of the thoughts are useless. 99% of those thoughts are recycled thoughts. कल जो चीज है आज उसी के लिए परेशान होकर घूम रहा हूं. कल बॉस ने ऐसे कर दिया, मैं घूम फिर उसी पे रहा हूं. फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है उसी को सोच रहा हूं. दुकानदार ने कुछ कह दिया उसी को सोच रहा हूं. एंड दे आर devastating my body. If there are bad thoughts, thoughts of stress, thoughts of pain, thoughts of expectation, thoughts of lack, they are devastating my body all through the day. And इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. मैं खुद उसे बना रहा हूं, मैं खुद उसको कंज्यूम कर रहा हूं. Now you know why our thoughts are so important. Thoughts do not remain at the level of my brain. Every moment they percolate down all through my body. Agar main itne sare negative thought leke ghumta hu, how do I change my health? How do I change my health? Main medicine do kha liya to kya badal jayega? Uska symptom ko maar dalega. Agar aapki health ko badalna hai, change karna hai, आपको एक नई दुनिया में कदम रखना है, एक नई अनुभव में कदम रखना है, यू विल हैव टू अटैक द थॉट्स. आपकी जो थॉट जहां से ओरिजिन हो रहा है उस पे आपको नजर रखना है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस. एट एवरी मोमेंट ऑफ माय एग्जिस्टेंस व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आई एम हैविंग, दैट्स व्हाट इज द की. सो दोस्तों, सुबह जो चीज आपको कहा गया था उसको मैं थोड़ी सी एक्सपेंशन किया था कि आप फिजिकल लेवल में जान सके एवरी मोमेंट अगर थॉट आप जनरेट करते हैं आपकी बॉडी में क्या परिवर्तन होता है. अगर आपको मैं आप मौका देता हूं टू थिंक बैड, वुड यू लाइक टू थिंक बैड नाउ? यस सर, नो नो. हु इज द विक्टिम? यू आर द विक्टिम. लेट्स गो विद द ऑलमाइटी प्रजापति ब्रह्मास ब्लेसिंग्स. वी लुक एट आवर एवरी थॉट दैट वी आर हैविंग every morning and try to stay. दोबारा जब मिलेंगे ये thought को कैसे रोकना है उसकी ओरिजिन कहां से आती है, उसके साइंटिफिक बेसिस में आपको दिखाऊंगा व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स में, व्हाट इज द टॉप मोस्ट एज में क्या नॉलेज है, हाउ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस गेटिंग कनेक्टेड एट द टॉप ऑफ एकिलॉन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.
थैंक यू मिस्टर दास फॉर सच एन वंडरफुल एंड energetic words of wisdom. तो अभी हम जो thoughts के बारे में हम सुन रहे थे, how thought is impacting our physical body surrounding, we'll have lot of things described in the expo also. आप सभी expo में visit करेंगे, देखेंगे कैसे thoughts scientifically thoughts कैसे नेचर को भी इम्पैक्ट करता है. इवन ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, दे रेस्पॉन्ड टू आवर थॉट्स. सो दिस बॉडी, द फिजिकल बॉडी व्हिच वी कॉल कंस्टिट्यूट ऑफ फाइव एलिमेंट्स, तो वो भी हमारा बॉडी जो है उसको रेस्पॉन्ड करता है. और वहां भी बताया गया है कि डॉक्टर एमोटो
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज. काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज. योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है सारा. चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार. योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है सारा. योगी जीवन है सारा. योगी जीवन है सारा.
जैसे हम अभी शेयर कर रहे थे, भाई साहब ने थॉट्स के बारे में बताया, अभी जो गीत हमने सुना, दिस इज हम इसको बोलते ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग्स. जैसे व्हीकल्स में जा रहे, ट्रैफिक सिग्नल दे, आप गाड़ी को ब्रेक करते हैं, करते कि नहीं, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट. तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में भी जो माइंड में थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो बीच बीच में उसको थोड़ा सा पॉज देने का आवश्यकता है। ये जो मेडिटेशन हमारा एवरी आवरली एक मिनट दो मिनट अपने आप को जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, ये थॉट्स एनर्जी को फिर चैनलाइज करते हैं। दिस इज ब्यूटिफुल प्रैक्टिस आई हैव लर्न फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज। हम ऑफिस जाते हैं, वर्क लाइफ में रहते हैं, बहुत सारा माइंड में वंडरिंग थॉट्स घूमता रहता है। भाई साहब ने कहा फैक्ट है, हजारों थॉट्स क्रिएट होता है। तो थोड़ा टाइम हम रिफ्लेक्ट करते चेक करते उसको देखते हैं एज ए ऑब्जर्वर, द थॉट्स लेवल थॉट्स क्वांटिटी कम्स डाउन, यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ। तो दिस इज हाउ वी फील चार्ज्ड अगेन। तो एम्पावर्ड माइंड अर्थात माइंड में जितनी क्वालिटेटिव थॉट्स क्रिएट होगा, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी, वो थॉट्स को जब हम चैनलाइज करते हैं विथ अवेयरनेस दैट आई एम ए गर्ल इंस्ट्रूमेंट, आई एम ए पीसफुल सोल, विथ दिस अवेयरनेस आवर माइंड बिकम्स एम्पावर्ड, वी विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस। ये हम खुद कर सकते हैं। एक घंटा दो घंटा में ऑफिस में बैठे थोड़ा सा एक मिनट अपने आप को देखो और साइलेंटली एक मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमारे आज के चीफ गेस्ट और हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर पटेल सर है जो कि नागपुर से है और इज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन फील्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और वहां भी आपके लाइफ में भी ये जो स्पिरिचुअल विजडम और मेडिटेशन आपको कैसे बर्नआउट और स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब चीज को कैसे हैंडल करने में मदद करता है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हम सभी को शेयर करेंगे। उसके बाद थोड़े टाइम हम क्वेश्चन आंसर आपसे इंडिविजुअल पैनलिस्ट के लिए क्वेश्चन लेंगे।
ओम शांति। थैंक यू भाई जी। जो अपना वर्न आउट का जो टॉपिक है इस पर तो हम चूंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में रहते हैं तो एक तो होता है कि हम अपने आप को पर्सनल कैसे हम बैलेंस बना के रखें, वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ का जो बोलना चाहिए बैलेंस, और दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स मास है उनको हम बर्नआउट से कैसे बचाएं, उस पर भी हमारा बहुत बड़ा फोकस है। तो मैं पहला बताना चाहूंगा कि हमारा पर्सनल फ्रंट पे क्या है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और पिछले 14 साल से बाबा के ज्ञान में हैं। तो हमारा जो रूटीन है जैसे अमृत वेला हमारा 4 बजे से शुरू होता है, 4 से 5 हमारा 4:45 तक अमृत वेला रहता है। इसके बाद हमारा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज हम पूरा मॉर्निंग वॉक का रहता है और इसके बाद हम तैयार होकर के अपना सेंटर पे जाते हैं और पूरा 1 घंटे मुरली सुनते हैं, ये हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है। तो हमारा जो एक रेगुलर जो हमारा जो एनर्जी गेन है जो अमृत वेला से और जो हमारा मुरली से, वो हमारा मॉर्निंग का ही एक बहुत अच्छा सेट बन जाता है। और इसके बाद जब हम ऑफिस जाते हैं और हमारे तरह तरह के जो हमारे लोग आते हैं मिलने के लिए आते हैं, हम मिलते रहते हैं, पर जो भाई जी ने अभी बताया कि हम बीच बीच में मोनोटोनस नहीं बनाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को मोनोटोनस नहीं बनाते हैं, बीच बीच में से 1 घंटे में 2 घंटे में हम ब्रेक लेकर के अपने आप को रिकूप करते हैं। तो हम अपनी इनर्जी जो हमारी है इनर्जी को हम ड्रेन आउट नहीं करने देते हैं, किसी स्टेज पे ड्रेन आउट नहीं करने देंगे। अगर हमारी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होगी तो हम जो अपना वर्क का जो पूरा दिन भर का लास्ट मोमेंट तक हम अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं और हमारा बहुत अच्छे से एक काम चल रहा है। जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि हम जब काम करते हैं तो हम दूसरे के लिए हम करते हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छाई के लिए हमेशा करना है, दूसरों की अच्छाई के लिए जब आप काम करोगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, और उससे आपको जो अच्छाइयां जो आपको एक सेटिस्फेक्शन जो बोलना चाहिए जो मिलता है, अनुभव मिलता है, उससे आपको और जिसे आपका भाई जी ने अभी बताया कि आपको जो एक गुडनेस फील होता है उससे हमारा कोई एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत बड़ा फायदा मिलता है जो कि हमारा पर्सनल फ्रंट पे है। तो हमारा कोई बर्न आउट होने का कोई मतलब इसमें मीनिंग नहीं आता है। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मोबाइल का अभी पिछले 8-10 साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है। और आजकल बच्चे इतने मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं और इतनी ज़्यादा मोबाइल का प्रॉब्लम आ गया है कि बच्चे धीरे धीरे एंग्जायटी और डिप्रेशन की तरफ जाते जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे। इसको काउंटर करने के लिए हमने अपने इंस्टीट्यूट में, जैसे मैं VNIT नागपुर में हूँ और हम IIIT नागपुर दोनों का देख रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ पर हमने एक कोर्स शुरू किया है पिछले सेमेस्टर से, मतलब जनवरी से शुरू किया है। वो कोर्स है डिजिटल वेलनेस का हमने कोर्स शुरू किया है, जो कि हमारे भाई हैं, एक अपने हैदराबाद में हैं, बाला किशोर भाई हैं, और जो अपने ओआरसी दिल्ली के जो विधात्री दीदी हैं, उन दोनों लोगों ने मिलकर के वो कोर्स का एक हम लोगों ने बनाया है, अच्छा मॉड्यूल है। और हमने ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU भी कर लिया है अपना दोनों इंस्टीट्यूट में, और हमारा वो कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है। पिछले सेमेस्टर में हमारे करीब VNIT में 60 बच्चे के आसपास थे, IIIT नागपुर में 105 थे। इस बार जो हमने जुलाई से जो बैच रजिस्टर किया है उसमें हमारे IIIT में 117 बच्चे आ गए हैं और हमारे VNIT में 84 बच्चे उसको ऑप्ट किए हैं। बच्चों का इतना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है और उससे जो उनको प्राप्ति हो रही है उसको एक बहुत ही अच्छे से उसको उन्होंने लिख करके उनका फीडबैक दिया हुआ है। डिजिटल वेलनेस होता क्या है, मैं जस्ट ब्रीफ में दूंगा, टाइम ज्यादा नहीं है। आप जब हम कोई भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अगर 1 मिनट का टाइम हम अगर डिजिटल प्रोडक्ट में लगाते हैं तो हमारे ब्रेन में 1 डिजिटल कैलोरी उसमें ब्रेन में चला जाता है। और धीरे धीरे जितना हम इसको यूज करते जाएंगे उतना हमारा ब्रेन में डिजिटल कैलोरी स्टोर होता जाएगा। अगर आप कोई ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसके चलते आपका ब्रेन स्लगिश हो जाएगा। जैसे अगर खाना खाते जाएं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करें तो हमारा धीरे धीरे हम ओबेस हो जाएंगे और तरह तरह की बीमारियां होती जाएंगी। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी डिजिटली ओबेस हो जाता है और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है और बच्चों का परफॉर्मेंस क्लास में डाउन होता जाता है, एंग्जायटी आ जाती है और एंग्जायटी लीड्स टू डिप्रेशन। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने ब्रह्मा कुमारी के साथ हमने एक MOU किया, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ब्रेन का एक्सरसाइज कुछ नहीं है जो हम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये राजयोगा मेडिटेशन है। तो बच्चों को हम सीधे अगर राजयोगा मेडिटेशन की तरफ बात करेंगे तो बच्चे सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह का जब हम उनको कोर्स के माध्यम से कराएंगे तो बच्चे सुनते हैं और उसका बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो इस तरह की चीजें बच्चों को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ VNIT IIIT नागपुर में तो MOU इस तरह का बन गया है। इसी तरह से उसके आसपास के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी इस तरह का 3-4 इंस्टीट्यूटों ने MOU किया है ब्रह्मा कुमारी के साथ में। हमारे जो विदर्भा में जो हमारे वसंत नगर में हमारी रजनी दीदी हैं उनके साथ में MOU हुआ है और एक कोर्स बहुत अच्छे से चल रहा है। उम्मीद है कि हमारा नागपुर में कुछ डिजिटल सिटी बन जाएगा कुछ दिन बाद, डिजिटल वेलनेस सिटी कहना चाहिए। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं और ये हमारा जस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया है कि डिजिटल वेलनेस क्या है। जैसे कहते डिजिटल डिटॉक्स, टॉक्सिन से पैदा हो रहा है उसको कैसे डिटॉक्स करे, क्लीन करे। तो मेडिटेशन तो एक सुंदर पावरफुल टूल है और इस कैंपस में आप देखेंगे मोबाइल इंटरनेट सब यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसको यूज नहीं करना है। ब्रह्मा कुमारी यही सिखाता है कि साधन को यूज करो लेकिन साथ साथ साधना भी रखो. When there is some part of sadhana, then sadhan ka real use, uska real purposeful, fruitful use rahega. To hum chahenge ki thoda sa ek do question audience se. Yes, puchhe. Ravi bhai, kuch vyavastha ho sakta hai kya? Mic thoda de sakte ho? Yes. Le ji. Relevant to this today's session, please. Yes.
Om Shanti. Mera naam DC Verma hai. Aur didi, abhi humne baat ki hai professional burnout ki, student burnout ki pe bhi charcha ho chuki. Mera sawal sambandhon ke burnout pe hai. Bahut dukh hota hai jab hum akhbar mein padhte hain ki pote ne apni dadi ko peeta. Koi neele drum ko dekh ke kuch log dar rahe hain aajkal. और कहीं कोई बहन इसलिए घर से बाहर निकाल दी जाती है कि उसको बेटा नहीं है. तो जो ये संबंधों का बर्नआउट है, क्योंकि मैं मानता हूं कि फिजिकल चोट से कहीं गहरी चोट मन की चोट होती है. तो जो फिजिकल ये जो रिश्तों का बर्नआउट है दीदी, इस बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे.
ओम शांति. तो अभी भाई साहब ने ये जो प्रश्न उठाया संबंधों के ऊपर, और हम सबको मालूम है ये आजकल बहुत चैलेंजिंग हो गया है. रिलेशनशिप्स अच्छे रहे, रिलेशनशिप में बहुत वायलेंस देख रहे हैं, क्रूरता है. तो ये सारों के ऊपर हम क्या करें? तो जैसे कल भी मैं मेडिटेशन के बारे में समझाते हुए मैं बता रही थी कि सबसे ऊंचा संबंध किसके साथ होता है, क्योंकि संबंध में हरेक को प्राप्ति चाहिए, है ना? संबंध, संबंध का मूल यदि आप कारण देखो, उसमें होती है प्राप्ति. कुछ न कुछ हमको चाहिए होता है, और जब वो नहीं मिलता है, या जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, जिसको हम फिर नाम देते हैं एक्सपेक्टेशन. एक व्यक्ति से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, और वो जब पूरी नहीं होती है, तो फिर यदि वह व्यक्ति अपने आप को फिजिकली पावरफुल समझता है, तो वो अपने गुस्से को कोई ना कोई रूप से उसको बाहर दिखा देता है. जैसे वो कोई लड़की है तो उसको घर से निकाल दिया, या कुछ और है तो मारा पीटा या धोखा दिया आपस में. तो इन सारी बातों में एक एक बात न लेकर के हम एक मूल कारण क्या होता है, कोई भी चीज का मूल कारण देखना होता है. हम प्रॉब्लम्स देखिए, पत्ते जो पेड़ के होते हैं उतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स को जब हम उसके रूट में जाना चाहते हैं, रूट में जाते जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक हरेक को ना एक वांट, और वो वांट ऐसा है. फिर जैसा प्रश्न आता है नीड एंड वांट, नीड अगेंस्ट वॉन्ट. अब डौरी के लिए मार डाला, अब घर में क्या वो क्या किसी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं जो मार डालते हैं? नहीं, लेकिन इच्छा, और जिसको हम कहते हैं लोभ, उस कारण से फिर इस प्रकार की एट्रोसिटीज जो है हम देख रहे हैं. तो हम देखेंगे मूल कारण जो है ना, वो मनुष्य आत्माओं की वीकनेसेस, जिसको हम कहते हैं विकार. विकार इटसेल्फ मीन्स विकृति. कोई भी एक आकृति है, कोई भी एक चीज है, उसमें विकृत टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, उसका नाम ही है विकार. तो जब वो सोच टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो फिर बिहेवियर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है. तो बात कहां हमको करनी है, सोच टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्यों टेढ़ा मेढ़ा सोच हो गया? क्योंकि इसको देखा, उसको देखा, इनके पास उतना, इनके पास उतना, इस कारण से सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं। तो जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम सर्व प्राप्तियां, वैसे भी हमको कोई भी, आपको आपका घर बहुत अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, आपको कोई कहता है अरे आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, तो आप क्या कहते? सब भगवान का दिया हुआ है। कहते नहीं कहते आपके पास पैसा है, ये है ना, आप बहुत लकी हो, सब भगवान का दिया हुआ है। तो जब हम कह रहे हैं सब भगवान का दिया हुआ है, तो जब हम उसके साथ योग लगाते हैं ना, तो ये जो आंतरिक विकृतियां हैं वो विकृतियां हमारी चेंज होने लगती है। मेरा जो मेरी इच्छा है, वॉन्ट्स है, वॉन्ट्स एंड नीड, जो मेरी वॉन्ट्स है ना वो कम हो जाएगी, पता समझ में आ जाता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा मन भरा हुआ है। जब मन भरा हुआ होता है ना, मन फुलनेस में होता है, तो आपके एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आजकल हम घरों को भरते हैं, घरों की इंटीरियर्स के ऊपर बहुत ध्यान है, घरों में सब मैचिंग 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 चाहिए। भाई आपस की मैचिंग कैसी है, रिश्तों में मैचिंग कैसी है? घर भर रहा है और सारी चीजें ईएमआई से खरीदते हैं, ओनर भी नहीं है तो हम, जब तक पूरा ईएमआई नहीं हुआ है तब तक हम ओनर भी नहीं है, बट हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, दिस इज माइन, दिस इज माइन, इज इट नॉट? तो जब हम परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो अंदर में भरपूरता आने लगती है, सुख शांति प्रेम आनंद। देखो मैं बोलती हूँ, सात चीजें हमको योग से प्राप्त होती है, अच्छे से सुनना। आपको मिलता है सुख परमात्मा की याद से, वो संबंध ऐसा है, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्ति और ज्ञान। ये जो आत्मा के सात गुण डिप्लीट हुए हैं वो परमात्मा की याद से फिर से हम भरपूर हो जाते हैं। अब आप सोचो, जिसका मन बहुत आनंद से भरपूर है, खुश है, वो बाहर में ये डौरी के लिए बहू को मारेगा क्या? मारेगा नहीं, मारेगा करेगा ही नहीं। जो भी एट्रोसिटीज बाहर में हो रही है वो, क्योंकि आत्मा अंदर से खाली है, उसको चाहिए, तो समटाइम्स एट एनी कॉस्ट चाहिए, एनी कॉस्ट चाहिए, चाहिए मीन्स चाहिए। भूख लगती है तो, एक भूख है ना ये, तो भूख को फुलफिल करने के लिए वो बैलेंस खो देता है, कुछ भी कर देता है, समझता है मैं इसको मार डालूंगा ना तो उसके बाद उसका सारा धन ले लूंगा। बहुत सारे चीजें आजकल तो ये भरा हुआ है, मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहती हूँ। आपको बेसिक एक चीज, खालीपन के कारण ही हम जो भी कर रहे हैं उल्टे सुलटे काम, वो हमारे आंतरिक खालीपन के कारण है। इसको क्यों देखते बैठते हैं दिन भर, क्यों इसको देखते बैठते हैं? एक खुशी मिल रही है, क्यों? जो खुशी संबंधों में है, यू नो, कारोबार करने में है, सीखने में है, वो खुशी नहीं मिल रही है तो फिर यहां से खुशी ले रहे हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो अंदर में जो खुशी आती है उसके, वो खुशी आते आते इसकी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं लगेगी। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा कुमारी में जो है ना, हमारा एक बहुत सुंदर रिकॉर्ड है, बहुत सारे एडिक्ट भी ब्रह्मा कुमारी के साथ ऐसे ही जुड़े हैं और उनकी एडिक्शन पूरी तरह से खत्म हुई, पूरी तरह से। ड्रग्स की हो सकती है या अल्कोहल की हो सकती है या स्मोकिंग की हो सकती है। तो ब्रह्मा कुमारी का नशा मुक्ति अभियान, और आज आपको, आजकल आपको पता ही होगा कि ड्रग्स का प्रॉब्लम कितना भयंकर रूप में चल रहा है, क्योंकि इट इज रीच द स्कूल्स, नॉट स्कूल्स इन द सिटीज, इट इज रीच टू द स्कूल्स इन द रूरल एरिया, खा रहा है पूरे यूथ को। सो व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस? अंदर की, अंदर का खोखलापन या अंदर का खालीपन, और योग आपका अंदर का खालीपन खत्म कर देगा। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हम कहते हैं ना, आप देखो उसकी आपको सॉल्यूशन मिल जाती है।
थैंक यू दीदी। अब मैं समझ रहा हूँ आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, हम और एक सेशन में उसको कवर करेंगे। लेकिन एक बार शिवन दीदी को किसने पूछा क्वेश्चंस बहुत सारा, उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, आप जितना भी क्वेश्चन पूछो मेरे पास एक ही आंसर है, और वो आंसर है हियर। तो रिमेन कॉन्शियस हियर, योर ऑल क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। एवरी क्वेश्चन, एवरी प्रॉब्लम इज द रिजल्ट ऑफ forgetting myself as a soul, identifying myself as a body. There all the problems, if you go deeper, all the problems, whatever relationship, whether conflicts, violence, stress, all problems has one solution, remaining soul conscious. तो इतनी शब्द के साथ हम समझते और एक सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत पावरफुल सेशन है मेडिटेशन का। हम पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं आप सभी भी इस डिस्कशन से बेनिफिट लिए, थोड़ा खड़े होकर हमारे पैनलिस्ट को अभिवादन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल इंसाइट। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मैं चाहूंगा कि हमारी बहन जी अंजलि दी सभी गेस्ट को छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी इंस्टीट्यूशन तरफ से देकर सबको सम्मानित करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ऑल। विल स्टे हियर, अनदर सेशन विल स्टार्ट जस्ट नाउ अबाउट मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच।